नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। अरुणाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 23 जिलों में फैली 54 ग्राम पंचायतों और 2 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। मतदान 6 नवम्बर को और मतगणना 8 नवम्बर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त रिंचिन तासी ने ईटानगर में आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संबंधित जिला परिषद और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि 73 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 500 से अधिक चुनाव अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए सभी संबंधित पक्षों से राज्य चुनाव तंत्र के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की है। देशभर में वन्यजीव और बायोडायवर्सिटी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राष्ट्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक सहयोगी प्रयासों को दर्शाता है। ईटानगर के बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के लोगों से वन और वन्य जीवों की रक्षा में स्थानीय प्रशासन के साथ सक्रिय योगदान की अपील की। इस अवसर पर वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वेस्ट कामेंग जिले के गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला में यूथ डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। अरुणदीप फाउंडेशन और महाविद्यालय के आईटी एनआरसी सेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को देश विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों और इसके लिए जरूरी योग्यता एवं कौशल विकास के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की स्टार्टअप मिशन और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ ही अपना रोजगार शुरू करने के लिए दी जा रही वित्तीय और तकनीकी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। चांगलांग जिले में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील किसानों को कोलकाता स्थित बसंती मशरूम सीड्स और मशरूम स्टोर का भ्रमण कराया गया। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित किसानों के एक्सपोजर टूर से उन्हें मशरूम की खेती की नई तकनीकों और कौशल विकास की जानकारी होगी। नाबार्ड की इस मुहिम का उद्देश्य जिले में रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आय बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में कल राज्य सहकारी विकास समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति ने राज्य भर में अगले 5 वर्ष के लिए 491 सहकारी समितियों के गठन की जिलावार योजना को मंजूरी दी। इसमें 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, 157 दुग्ध सहकारी समितियां और 184 मत्स्य पालन सहकारी समितियां शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने प्रायोगिक आधार पर नामसाई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा 500 मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण योजना को भी मंजूरी दी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन की दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की। लेपारादा की जिला परिषद अध्यक्ष नाबी जिनी दिर्ची ने निगम विलेज में युवाओं द्वारा नवनिर्मित कमरे सीसी स्टेप्स का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मुंबई में समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मत से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए 6.5% पर बरकरार रखा है। परिणामस्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर SDF 6.25% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर MSF तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। G20 देशों के संसद अध्यक्षों का 9वां सम्मेलन इस महीने की 13 और 14 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। इस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस वैश्विक आयोजन में 25 संसदीय पीठासीन अधिकारी, 10 उपाध्यक्ष और 50 सांसद भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा से संबंधित विषयों के साथ जलवायु परिवर्तन पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।